ओम शांति। ज्ञान मार्ग पर चलते हुए सभी को बहुत पावरफुल होकर चलना पड़ता है, है या नहीं ये बात? पहले तो पवित्रता की धारणा में पावरफुल बनना पड़ता है, साथ ही साथ देते हैं या नहीं, फिर ज्ञान नया, भोजन की शुद्धि, कोई नाराज हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई ब्रह्मा कुमारियों को गाली दे रहा है, कोई बाबा को गाली दे रहा है, सब सुनना पड़ता है। तो पावरफुल बनने की बहुत जरूरत है। एक युवक का फोन सवेरे सवेरे आया, 2 साल से ज्ञान में हूं, धारणाएं बहुत पक्की हैं, भोजन अपने हाथ से बना के खाता हूं, सब परिवार वाले दुखी रहते हैं, मैं उन्हें दुख दे रहा हूं, मेरा पाप बढ़ेगा क्या? फिर कहा बाहर जाते हैं, मेरे पिताजी को घूमने फिरने का बहुत शौक, हम भी जाते हैं, कहते हैं लहसुन प्याज के बिना ही खाओ, पर खाओ तो सही बाहर। तो मनुष्य को पावरफुल बनना पड़ता है। कोई मनुष्य जब संसार से हटकर कोई मार्ग चुनता है तो लोग तो विरोध करते ही हैं, लेकिन जो मार्ग सत्य है, जिसकी सत्यता का हमें ज्ञान हो गया, पूर्ण दृढ़ता आ गई, उस पर चलने में जरा भी कमजोर नहीं होना चाहिए। ठीक बात है? माताओं से पूछता हूं, माताओं को ज्यादा परीक्षाएं देनी होती हैं, लेकिन जितनी परीक्षाएं होंगी, परीक्षाओं का महत्व नहीं, महत्व है कि परीक्षाओं में हमने नंबर कितने लिए। मेरे पास बहुत पेपर आ रहे, विघ्न आ रहे हैं, इसका महत्व नहीं। हर विघ्न और परीक्षा में हम कितने पावरफुल बन कर रहे, और पावरफुल हो गए, इसका बहुत महत्व है। इसलिए जैसे रामायण में दिखा दें, असुरसा मुंह खोलती जाती थी, हनुमान आकार बढ़ाते जाते थे। जितनी परीक्षाएं, जितने विघ्न जीवन में आए, उतने ही हम बहुत अधिक शक्तिशाली बनते चले। ये कभी नहीं सोचेंगे कि भगवान के बन गए फिर भी कठिनाइयां। कई लोग ये सोचते हैं कि हमने तो सोचा था बाबा के बनते ही सब कुछ सरल हो जाएगा, ये तो कठिनाइयां बढ़ गई। पर कठिनाइयां बढ़ी नहीं, हमें पावरफुल बनाने के लिए सामने आई हैं। सभी इस तरह का चिंतन रखेंगे कि हमें हर बाधा को पार करते हुए मंजिल की ओर तेजी से आगे बढ़ना ही है, संसार की कोई बाधा मुझे रोक नहीं सकती। क्या विचार है भाइयों का, बोलो, मैं ठीक कह रहा हूं या गुंजाइश है? आजकल देखो, आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्यार करते हैं, माँ बाप की चिंता करते हैं क्या कि दुखी होंगे पीछे? बहुत लोग गुजरे होंगे इन समस्याओं से। आजकल ये समस्या देश में कोरोना से बड़ी समस्या बनी हुई है। कोरोना तो बदनाम हो गया बेचारा, पर कैंसर बड़ी समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या। डिवोर्स के केस करोड़ से ज्यादा पार कर गए, कब फैसला होगा? तो जब गलत मार्ग पे चलने वाले किसी की परवाह नहीं करते, तो ईश्वरीय मार्ग पर चलने वालों को छोटी छोटी बातों की चिंता क्यों करनी चाहिए? लोग तो रोकेंगे। जो ईश्वरीय मार्ग पे चला उसके शत्रु ही शत्रु, बाद में पूजा जब होते हैं। मैं सोचा करता हूं साई बाबा हुए हैं, आप लोग जानते होंगे ना, महाराष्ट्र में बहुत मंदिर बन गए आजकल उनके भी, पहले मंदिर नहीं होते थे गुरुओं के। जब वो थे तो किसी ने उनको रहने के लिए मकान भी नहीं दिया हुआ था, एक टूटी सी उसमें रहते थे मस्जिद में, कोई कहते थे मुसलमान है, कोई कहते थे हिंदू है, बिस्तर भी नहीं, तकिया भी नहीं, लोग गाली देते, खाना भी नहीं देते थे। और अब देखो उसकी पूजा हो रही है, अभी अभी की बात तो है, कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है। सोने का बना दिया उसका सारा कुछ। तो ईश्वरीय मार्ग पे चलने में बाधाएं आएंगी अवश्य, ये स्वीकार कर लें सभी, और हमें शिव शक्ति बनकर ये याद रखते हुए कि भगवान हमें साथ दे रहा है, पार करते चलना है, बाबा हमारा साथी है, इस बात को सभी बहुत पक्का करके जाएंगे यहां से, साथी है वो, साथ दे रहा है। लेकिन साथ में हमें पावरफुल बनाने के लिए कुछ पेपर भी लेता है, ताकि ऐसा ना हो हम उसके ऊपर ही चलते रहें, खुद कमजोर बन जाएं कि बाबा तो बैठा है ना, हमें करने की क्या जरूरत है। बाबा बैठा है माना उसकी शक्तियां हमारे साथ है, इसका अर्थ है कि सभी बाधाओं को हम हंसते हंसते पार कर लेंगे, शरीर की बाधाएं हों। आजकल जो बहुत चला, किसी की अचानक मृत्यु होती है, ऐसी बाधाएं हों, सुन के भी लगता है कि क्या हो गया। एक परिवार आया पीछे अभी भट्टी में, ऐसे ही कहा हमारे पापा ऑफिस से आए, मुझे आवाज दी बेटा पानी देना, मैंने पानी दिया और पिया और गए, बिल्कुल इतना ही, वो खड़ा ही है गिलास लेने के लिए और वो गए। तो एक और पॉजिटिव बात कि बहुत पुण्य आत्मा थी, ज्ञान में थे, किसी को कष्ट नहीं दिया होगा, पाप नहीं किए तो न किसी से सेवा ली न पैसा खर्च कराया। दूसरी बात, अचानक अभी तो थे 10 सेकंड पहले, 10 सेकंड के बाद है ही नहीं। एक बड़ा पेपर आ जाता है परिवार में, लेकिन आगे तो सब कुछ अचानक ही होगा, ये सब को पक्का कर देना है। 3 शब्द बाबा बहुत बार बोलते आए, अचानक, एवर रेडी, और बोलो किसको याद है तीसरा, लंबे काल का अभ्यास। क्योंकि लंबे काल का अभ्यास ही अचानक के पेपर में एवर रेडी बनाएगा। अगर लंबे समय का अभ्यास नहीं होता तो अनेक क्वेश्चन उठते हैं और नाराजगी होती है बाबा से। बहुत लोग यही कहते रहे, बाबा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने बाबा का क्या बिगाड़ा था। बाबा थोड़ा ही करता है सब, ये तो कर्मों के अनुसार इस संसार का खेल चल रहा है, इसमें भगवान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो तो केवल अब मदद कर रहा है। अगर किसी को किसी समय पर शरीर छोड़ना ही है तो शिव बाबा ऐसा नहीं कहेगा कि 5 दिन के बाद छुड़वाऊंगा, लेकिन वो इतनी मदद अवश्य कर देगा कि शरीर छोड़ते हुए आत्मा को कष्ट न हो। तो सभी अपने को बहुत पावरफुल बनाएंगे। दूसरी बात पावरफुल से जुड़ी हुई, निर्भय। सभी देखेंगे दिनों दिन इस संसार में भय बढ़ता ही जाएगा, बहुत भय फैलेगा। जैसे अभी कोरोना काल में लोग कहते थे कि कोरोना से कम लोग मर रहे हैं, भय से ज्यादा मर रहे हैं। अभी भी देखो ये ओमिक्रोन आया, एक केस आ गया भारत में, घबराहट हो गई लोगों को, पता नहीं क्या आ गया, लगता है महाकाल ना आ गया और सबको ले जाएगा कल ही। गुजरात में एक केस आ गया, गुजरात में ओमिक्रोन का प्रवेश, भयभीत सब। पीछे पता चला इसमें तो दम ही नहीं है कुछ, इसमें कोई दम नहीं है। तो भय, छोटी छोटी चीजें मनुष्य को भयभीत करेंगी। हमें अपने को निर्भय बनाना है। क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे बोलो। बहने बोले आज ही सीट वाली, हमें अपने को पावरफुल बनाना है, निर्भय बनाना है। पहली प्रैक्टिस बोलो। नहीं आई आवाज, आपको ख्याल में नहीं आ रहा। आत्मा मरती ही नहीं, सबसे भारी भय, भय का बीज मृत्यु का भय। आप एक मच्छर को पकड़ने लगो, जान बचा के कितने तरफ भागता है, मौत का भय। और ब्राह्मणों को इस मौत के भय से मुक्त होना होगा। क्यों? अब तो मैंने उत्तर ही दे दिया, आत्मा अमर है, आत्मा बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि एटम बम की अग्नि भी आत्मा को जला नहीं सकती, या जला देगी। एटम बम छोड़ दिया गया, सब आत्माओं को जला के राख कर दो, एक भी नहीं जलेगी। हम इतने पावरफुल हैं, हम मरते ही नहीं। इस देहभान को धीरे धीरे छोड़ते चलना है और सभी को अपने अंदर दो चार संकल्प रखने हैं जो आपको निर्भय बनाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसका अर्थ होता है मैं बहुत शक्तिशाली हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये संकल्प आपको बहुत हल्का रखेगा, क्योंकि कल्याणकारी बाबा का हाथ पकड़ा है, तो मेरे साथ सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। ऐसे कुछ अपने अपने संकल्प सुन लो। जीत हमारी ही होगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारा साथी है। मैं एक बात सुना रहा हूं आजकल बहुत ज्यादा क्लासेज में, आपको भी सुना देता हूं, उसका प्रयोग करना, उस नशे में रहना बहुत अच्छी तरह है। वो बात क्या है? बाबा ने एक ही बार कही है ये बात, एक और चाहे अक्षौणी सेनाएं हो। अक्षौणी नाम सुना होगा आपने, महाभारत से आया है, लाखों सेनाएं हो और दूसरी ओर तुम अकेले हो, तो भी जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है। क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है। अब इसको समा दो अपने अंदर सभी। सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना, ये मजा आ जाता है सुनते ही। अभी नहीं क्लास हो रही है अभी। हाँ ठीक है, मिल लेना। तो सुनने में कितना मजा आता है, लेकिन अगर इसे हम रोज याद करेंगे, ऐसी जगह लिख लेना, एक बार रोज पढ़ लो कुछ दिन तक, ताकि नेचुरल हो जाए, स्मृति बनी रहे। यहां में घबराने की जरूरत नहीं, चाहे माया पर विजय की बात हो चाहे परिस्थितियों पर विजय हो और आगे चल के तो प्रकृति पर भी विजय होगी, व्याधियों पर भी विजय। बाबा के कई बच्चों की व्याधियों पर बहुत अच्छी विजय हो रही है, हुई कोरोना में भी और अभी भी हो रही है, लेकिन उनकी जो न तो घबराते और बहुत खुश रहते हैं, खुशी में बहुत बड़ी ताकत है। अपनी खुशी को भी अपनी शक्ति बना दें सभी। खुशी केवल खुराक ही नहीं, खुशी हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति भी है। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, मैं उसकी हिंदी कर देता हूं कि सफलता खुशी की चाबी है। सफलता मिलेगी तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन लोगों ने अब इसको इस तरह कहना शुरू कर दिया, खुशी सफलता की चाबी है। जो मनुष्य बहुत खुश रहता है, सफलता उसको अवश्य प्राप्त होती है। हमें पूरी तरह एक बात को समझ लेना है। मैं आपको बाबा का एक बहुत गहन महावाक्य सुना देता हूं, किसी ने सुना नहीं होगा, मैंने कई बार क्लासेज में पहले बहुत सुनाया है। ये ऐसे महावाक्य हैं जो एक ही बार बोले भगवान ने, रिपीट नहीं हुए, इसलिए सब इनको नहीं जानते। महावाक्य है, अगर तुम साक्षी भाव में स्थित रहो तो एक मास का काम एक घंटे में ही कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है, एक मास का काम एक घंटे में कर सकते हो। बोलो इसके पीछे राज क्या है, बताओ रहस्य। विचारणीय है ये बात, और भगवान ने कहा इसलिए संपूर्ण सत्य है। जैसे बाबा सृष्टि के सारे कार्य जो उसे करने हैं फटाफट कर लेता है, ऐसे 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 देर नहीं लगती, एक घंटा भी उसके लिए बहुत है। हम भी, अब इसमें राज ये है कि जितना जितना हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होते जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त, हमारी आत्मिक शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी कि हम संकल्प से ही सब कुछ करने लगेंगे, संकल्प सिद्ध होंगे। यहां संकल्प किया वहां रिजल्ट, ये होने जा रहा है। सृष्टि पर अभी अंतिम खेल होगा ये, बाबा के उन बच्चों के द्वारा जिन्होंने अपनी संकल्प शक्ति को व्यस्त होने से बचाया है। यहां संकल्प किया, कोई बीमार है आपका व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर, डॉक्टरों ने कह दिया है अभी कोई इलाज नहीं, बस ले जाओ जब तक जिए ठीक है, आपने इधर पावरफुल स्थिति में स्थित होकर संकल्प किया, नहीं एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा, और उसी दिन से ठीक होना शुरू किया, हफ्ते में ठीक हो गया। इधर संकल्प उधर फल, ये दिखाई देगा। चाहेंगे आप ही ऐसा काम करना? सुना सभी ने, कौन कौन चाहेंगे ऐसी स्थिति बनाना? सब सोच लो अच्छी तरह, सबको व्यर्थ से मुक्त होना होगा। माताओं की एक बात देख के मैं कभी कभी बहुत हंसता हूं, सबकी नहीं है, किसी किसी की, जब सवेरे योग में कमरे से निकलती हैं तो बात करते आती हैं, और जब योग करके जाती हैं तो बात करते ही जाती हैं, बहुत बातें इकट्ठी होती हैं। योग के बाद तो शायद अनुभव सुनाती जाती होंगी, आज ऐसा हुआ, इतना अच्छा कराया बाबा ने। लेकिन अंतर्मुखता इस ईश्वरीय मार्ग पर सफलता का साधन आधार है। जितना बोलेंगे शक्तियां नष्ट होंगी, व्यर्थ बढ़ेगा। देख लो कौन कौन ये महान कार्य करना चाहेंगे, लक्ष्य बनाएंगे कि इधर संकल्प किया उधर सिद्ध हुआ। ये बाबा के महावाक्य हैं। ऐसी स्थिति आनी है तुम्हारी तो व्यर्थ से पूरी तरह स्वयं को मुक्त करते चलना है। अपने अपने घरों में, मैं तो सभी माताएं बहुत बैठी हैं, सभी को एक संकल्प देता आया हूं कि अपने अपने घरों को तीर्थ बनाओ। आपकी सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी, परिवार की सभी समस्याएं गायब हो जाएंगी। अपने को तीर्थ बनाओ, अपने परिवार घर को तीर्थ बनाओ। और इसके लिए सभी को इष्ट देव देवी बनना होगा। इष्ट देव देवी, तो आपको कुछ भी समस्या नहीं रहेगी, आपके घरों में सुख ही सुख रहेगा, धन दान भरपूर रहेगा, सब विनाश में हाय हाय करेंगे और आप वाह विनाश हुआ वाह ऐसे कहेंगे, ये मर गए वाह मर गया बहुत अच्छा हुआ। सोच लो क्यों वाह वाह करेंगे, सोचने की बात है। 5000 साल की लंबी यात्रा हम सब ने पूरी की और भाग्य देखें अपने, यात्रा के अंत में भगवान मिल गए जिसकी तलाश थी युगों से। बाबा कह रहे थे एक दिन मुरली में, तुम कहते थे भक्ति में, हे भगवान हम देख तो लें तुम हो कैसे, अब मैं तुम्हारे सम्मुख हूं देख लो कैसा हूं मैं। कितना अच्छा हुआ, कुछ भी हो इस नशे में रहें, इस खुशी में रहें, कितना बड़ा भाग्य है हमारा, भगवान मिल गए हमारी जीवन की यात्रा में, वे हमारे साथी बन गए। संसार के लोग तो सुनेंगे भी नहीं, ये उन्हें पता भी नहीं चलेगा ये क्या कह रहे हैं। आप अपने परिवार में कहें तो कहेंगे दिमाग पे असर आ गया, लगता कुछ गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर को दिखाओ। रहा चलते चलते भगवान मिल गए, आना तो सबको यही है। जय जयकार करते हुए आएंगे बाबा के सभी बच्चों की कि आप कितने भाग्यवान हो, भगवान को इस धरा पर देखा, कार्य करते देखा, देखा ही नहीं हम भी उसके साथ कार्य में लग गए, उसके मददगार बन गए। जिसको किसी की मदद नहीं चाहिए उसने हमें अपना मददगार बना लिया, ये बहुत बड़ा भाग्य है। तो इस जीवन को बहुत सुंदर बनाना है, बनाते चलना है इस जीवन को बहुत सुंदर। तो पहली चीज, क्रोध से अपने को मुक्त करना है। जिसको ज्यादा आता हो वो धीरे धीरे कम करें, कम हो गया हो अब पूरा समाप्त करने का लक्ष्य रखेंगे। बाबा का बनने के बाद बाबा के बहुत बच्चे बहुत सारा क्रोध छोड़ देते हैं, शांत हो जाता है चित्त। किस किस ने बहुत सारा क्रोध छोड़ दिया है, हाथ उठाओ जरा खुशी से, वाह बहुत अच्छा। जिसको अब पूरा छोड़ना वो हाथ उठाओ, ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं छोड़ना, छोड़ना है। क्रोध बुरी चीज है, तुम्हें भी आता है, तुम्हें भी क्रोध आता है, तुम्हें तो हाथ उठा रहे पूरा पूरा, क्रोध बहुत बुरी चीज है। जिस घर में क्रोध होता है दबाव बना रहता है, किसी को खुशी नहीं रहती, सब भयभीत रहते हैं, अंडर प्रेशर रहते हैं, दबाव भी रहते हैं। ऐसे घर में विघ्न बाधाएं बहुत आएंगी, बच्चों की बुद्धि का विकास रुक जाएगा, लक्ष्मी भी रूठ कर बाहर चली जाएगी। इसलिए चित्त को शांत करें। बाबा तो कभी कभी हंसी में कहा करते थे, अव्यक्त बाबा, कि कई बच्चों के क्रोध की आवाज तो वतन तक भी पहुंचती है, मुख से धुआं निकालते रहते हैं, दुआ की बजाय धुआं, घुटन हो जाती है, बाबा को देखकर अच्छा नहीं लगता। मतलब इतना क्रोध हो जाता है कि बाबा का भी अटेंशन जाता है, नीचे क्या होने लगा है, ये देखते हैं ये तो मेरा ही बच्चा है, और लग जाती होगी ना उसे भी। हम अपने को इतना चेंज कर दें कि चारों ओर आवाज फैल जाए। ऐसे बाबा के कई बच्चों के साथ हुआ है, क्रोध बहुत था, एकदम छूट गया, कईयों ने तो एक हफ्ते में शांत कर दिया अपने को, चारों ओर कम से कम 100 लोगों में आवाज फैल गई, ब्रह्मा कुमारियों ने इसको शांत कर दिया। कितना झगड़ालू था ये, किससे भी लड़ झगड़ जाता था, शांत हो गया तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है ना समाज पर, फ्रेंड्स पर, बहुत अच्छा रहता है। क्रोध को छोड़ने के लिए, मैं दोनों को छोड़ने की विधि बता रहा हूं, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, अंतर मन की विधि है, सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है, आप सुन लें और नोट कर लें, कुछ दिन तक लगातार कर देना, 21 दिन। सवेरे उठते ही पहला संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पहले तो बाबा को गुड मॉर्निंग, फिर ये संकल्प। दूसरा संकल्प, मैं विजयी रतन हूं। तीसरा संकल्प, क्रोध मुक्त हूं। चौथा, शांत स्वरूप हूं। इसी क्रम से करना है, मास्टर सर्वशक्तिवान, विजयी रतन, क्रोध मुक्त, शांत, 7 बार कर लेना इसी क्रम से। बहुत जल्दी क्रोध पर विजय हो जाएगी, काम पर विजय, बिल्कुल ऐसे ही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। 7 बार पवित्र संस्कार जागृत हो जाएंगे, काम को जीतने की शक्ति आ जाएगी, क्योंकि जिसने इन दोनों विकारों को जीत लिया वही सच्चा योगी है। गीता में भी ये बात कही है, अर्जुन, जो योगी काम और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है वही सच्चा योगी है। तो हमारी योग की शक्तियों का प्रत्यक्ष फल इन विकारों पर विजय प्राप्त करना है। अब खेल तेजी से बदलता जाएगा, ऐसे ही चलेगा, जैसे कोरोना हुआ फिर शांति, फिर दूसरी घटना होगी फिर शांति, फिर तीसरी घटना होगी फिर शांति। इसके पीछे ड्रामा में ये जो पार्ट चलेंगे इनके पीछे राज ये हैं कि विनाश देखकर अनेक आत्माओं को वैराग्य होगा, तेज पुरुषार्थ होगा। तो दोनों लक्ष्य हैं बाबा के पास, वैराग दिलाकर आत्माओं को संपूर्ण बनाना और विनाश की इन घटनाओं में सभी के विकर्म विनाश करा देना। क्योंकि सबको पावन करके घर वापिस ले जाना है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस सभी करेंगे तो अपने को महान बनाना है। मैं आप सभी को, चाहे आप एक साल से ज्ञान में हैं, एक सुंदर संकल्प दे रहा हूं। अपने से बात करेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थी वही बनते हैं जो अपने से बात करते हैं। क्या बात करेंगे? अगले 10 वर्ष में मैं इस सृष्टि रंग मंच पर क्या पार्ट बजाना चाहता हूं, बजाना चाहती हूं। ये तो छोटा सा पार्ट है कि परिवार की पालना आप कर रहे हैं, सबसे छोटा पार्ट है, क्योंकि वो जिम्मेदारी होती है और हर जन्म में हम ये काम करते ही आए हैं। कोई नई बात नहीं, चिड़ियाएं भी कर रही हैं या नहीं। मैं देखा एक दिन, मैं सोचता ही रह गया, मेरे पास कुछ पड़ा था, मैंने बाहर डाला, चिड़ियाएं आ गई, मोटी मोटी चिड़ियाएं आजकल बड़ी बड़ी, तो बच्चे भी थे उनके, तो माताएं क्या कर रही थी, उनके दाना उठाएं, उसको बारीक करें और बच्चों के मुंह में डालें। मैं देख रहा था कि जैसे मनुष्य करता है, ये जानवर भी वैसा ही कर रहे हैं। इसको इनको किसने सिखा दिया? बच्चों को जन्म देना, उनकी पालना करना, उन्हें ठंडी गर्मी बरसात से बचाना, बड़े होने तक उनका पोषण करना, वंडरफुल खेल है ना, जीव जंतु कर रहे हैं। कौन उनको सिखा रहा है? घर बनाना, सुंदर घर, बच्चे दिए तो एक अच्छा प्रोटेक्शन का घर बना दिया छोटा सा, बच्चे उसमें बड़े हो जाएं, कोई उन्हें खा भी ना सके। तो हम सभी को इससे हटकर कुछ काम करना है, इसलिए मुझे अगले 10 सालों में क्या पार्ट बजाना है, चिंतन करें जो भी कर सके। सब तो ये नहीं करेंगे, हीरो एक्टर तो थोड़े ही होते हैं, पर आप अपने को हीरो एक्टर बनाएं, उलझ के न रह जाएं परिवारों के चक्रव्यूह में। ये बात आपको भारी तो लगेगी जो मैंने कही, क्योंकि परिवारों की मोह ममता में हर मनुष्य इतना जकड़ गया है कि उससे बाहर निकलना उससे आता नहीं। प्रवेश तो कर लिया अभिमन्यु की तरह, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आता। बाहर निकलना सीखना है। कई सोचते हैं मोह ममता छोड़ दें कैसे काम चलेगा, कई सोचते हैं मोह ममता नहीं होगी तो हम कमाएंगे, इन्हें खिलाएंगे क्यों। ये सब नहीं है, ये गलत सोच है। मोह ममता छोड़कर आत्मिक प्यार बढ़ा दो, उलझनों की बजाय अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना लो। आपको पता चलेगा शिव बाबा सबको पाल रहा है, हम नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान पालता है, वो खिलाता है, लगेगा अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो जाए, हम बाबा के बल और भरोसे पर जीने लगें, समर्पण भाव से जीने लगें, तो परिवारों को संभालने की, उन्हें चलाने की जो ये भागदौड़ करनी पड़ रही है, इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए अपनी स्थिति को संभाल लो, सब कुछ स्वतः ही संभल जाएगा। सुनी सभी माताओं ने, अपनी स्थिति को संभाल लो, सब कुछ स्वतः ही संभल जाएगा। ये अलौकिक शक्तियां, ये रूहानियत की शक्ति इतना जबरदस्त काम करेगी कि आपके वाइब्रेशन से ही सब कुछ ठीक होने लगेगा। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक माता को एक ही लड़का था, शादी हुई थी 5 दिन पहले, लड़के को छाती में दर्द होने लगा। पहले तो माँ ने सोचा गए शादी का हो जाता है, कुछ पिलाया, चाय पिलाई, काढ़ा पिलाया, दर्द बढ़ता ही गया। हार्ट, किसने कहा हार्ट वाले को दिखाओ, हार्ट वाले को दिखाने ले गई, ठीक ठाक था, डॉक्टर आया नहीं था। इतने डॉक्टर आया, शरीर छूट गया। एक ही लड़का था बेचारी को, बहुत अच्छी स्थिति इसने रखी। अगर मनुष्य की बहुत अच्छी स्थिति हो, उसने तो मृत्यु के बाद अच्छी स्थिति रखी, अपने को संभाला, लेकिन अगर हमारे पुण्य कर्म हमें साथ दे रहे हों, तो जैसे हम जाएंगे डॉक्टर खाली बैठा होगा, आ जाओ दवाई देगा, फट से ठीक हो जाएंगे। पुण्य कर्मों का ये प्रभाव रहता है कि जल्दी ही सब कुछ सहज अच्छा मिल जाता है। पाप कर्म बढ़े हुए हैं तो लास्ट मोमेंट पे सारा खेल बिगड़ता रहेगा। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, लास्ट में देखेंगे सब बिगड़ गया, परेशान हो जाएंगे। तो साक्षी भाव को बढ़ाएंगे सभी, अपने जीवन को सरल करना है सबको। अब भागदौड़ की जिंदगी से अच्छा जीवन बनाना है, सहज भाव से जीवन जीना। और याद रखेंगे, जिसके पास ज्ञान धन बहुत होगा उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी, सहज प्राप्त हो जाएगा। भाग दौड़ के जीवन से अब थोड़ा अपने को हल्का करो, अपने लिए, बाबा के लिए थोड़ा थोड़ा समय सभी को निकालना है, तो आपके सारे कार्य वैसे ही सफल होते रहेंगे। जो अपने लिए समय नहीं निकालते, उलझनों में उलझे रहते हैं, उनकी उलझने बढ़ती ही जाती हैं। तो बाबा के ये महावाक्य हैं, इशारे हैं कि अब युग बदलेगा तेजी से, हमें अपने को तैयार करना है ताकि जो कुछ भी संसार में हो, इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से सुन लेंगे, अभी पक्का कर देंगे अपने जीवन में, जो कुछ हो उसे स्वीकार करना ही होगा। स्वीकार करना, पक्का कर दो ये शब्द, कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा मनुष्य चाहेगा, कुछ और होता रहेगा। देखो अभी भी आप देख रहे हैं, कोरोना काल बढ़ा, ऑक्सीजन की कमी पड़ी, सरकारों ने सब जगह ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगा दिए, अब मुझे लगता है वो काम ही नहीं आएंगे। भाई लोग क्या समझते हैं, मनुष्य कुछ प्लानिंग करेगा, प्रभु प्लानिंग कुछ और होगी। मनुष्य किसी और चीज के लिए तैयार करेगा, घटनाएं दूसरी घटने लगेंगी। इसलिए जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना ही है, आदत डाल दो अभी से। होगा वही जो होने वाला है, जो ड्रामा में फिक्स है, अनहोनी कुछ नहीं होगी। जो कल पहले हुआ था वही होगा। हम रोए या हंसे, दुखी हो या परेशान हो, जो होना होगा उसको कोई बदल नहीं सकेगा। इसलिए आदत डाल दें अभी से, हमें सब कुछ स्वीकार करके ही चलना है। स्वीकार करेंगे तो आगे का मार्ग निकाल लेंगे, स्वीकार ही नहीं करेंगे तो जो अच्छा मार्ग मिल सकता है वो भी दिखाई नहीं देगा। स्वीकार करके अपने को हल्का करेंगे तो बहुत तेजी से हम दूसरे मार्ग पे चल पड़ेंगे। युग तो बदलने वाला है, सब अपने को तैयार करेंगे, रोज एक बार याद दिलाया करेंगे। जो ब्रह्मा बाबा की लंबी चौड़ी प्रैक्टिस थी, सुनते हैं सभी उसको मुरलियों में, बच्चे जो कुछ इन आंखों से दिखता है कुछ भी नहीं रहेगा। कलयुग का कुछ भी सतयुग में नहीं दिखाई देगा। क्या हम सभी इसके लिए तैयार हैं? अभी तैयार नहीं है, अपने को तैयार करना है। देख लिया करो आंखों से दूर दूर तक की दुनिया, ये सब नहीं रहेगी, कुछ नया आएगा, इससे सुंदर आएगा ना, बहुत सुंदर आएगा। तो चेंज को स्वीकार करने की आदत बना लें, याद रखेंगे सब, चेंज को स्वीकार करना। जो चेंज होती है रोज के जीवन में भी, उसे स्वीकार कर लेना, इससे मन बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा, निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे।